समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई और सुहावनी सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे लेकर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और मेरे साथ हैं तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
नमस्कार देवेंद्र, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर एवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, विच देवेंद्र हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड टू ऑल ऑफ यू। एंड दिस नेक्स्ट हाफ एन आवर इज डेफिनेटली going to be interesting because we have a lot in store for all of you. But before that, let me just wish you all a very happy Wednesday. Today, choose joy, laughter and a little bit of play. Let's begin our program with the headlines, shall we?
जी, विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आज इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक में भाग लेंगे। वे पड़ोसी देश पाकिस्तान के 2 दिन के दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान की अध्यक्षता में हो रही SCO की इस बैठक में डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत SCO की सभी प्रकार की गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेता है। संगठन की हर वर्ष शासनाध्यक्षों की बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें व्यापार और आर्थिक एजेंडों पर विचार विमर्श किया जाता है। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने कहा था कि उनकी पाकिस्तान यात्रा एक बहुपक्षीय उद्देश्य के लिए है। उन्होंने इस अवसर पर किसी भी द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना से इनकार किया। ये 9 वर्षों में किसी भारतीय विदेश मंत्री की पड़ोसी देश की पहली उच्चस्तरीय यात्रा है।
Defence Minister Rajnath Singh laid the foundation stone for the Indian Navy's very low-frequency VLF radar station yesterday. Speaking on the occasion, the Defence Minister said VLF station is being built with a vision of securing country's maritime interests and exuded confidence that it will prove to be a boon to the armed forces. He said it will ensure secure and real-time communication between our ships and submarines with the command centres of the armed forces. Mr. Singh asserted that once operational, the high-tech VLF station would not just be a military establishment but a strategic asset of national importance. Built at a cost of 3,200 crore rupees, the facility is spread across 2,900 acres.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया की 3 दिन की यात्रा संपन्न करने के बाद अपने दौरे के दूसरे चरण में आज मॉरिटानिया के लिए रवाना होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत और अल्जीरिया के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय नेताओं और शिष्टमंडल के साथ विभिन्न द्विपक्षीय बैठकें की। हमारे संवाददाता ने बताया कि मॉरिटानिया की 1 दिन की यात्रा में राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। वे मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद आउल्द गजवानी और अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मॉरिटानिया में भारतीय समुदाय के साथ भी संवाद करेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति की अल्जीरिया यात्रा ऐतिहासिक रही है। विदेश मंत्रालय के सचिव अरुण कुमार चटर्जी ने बताया कि इस दौरे से दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। विदेश सचिव ने बताया कि ब्रिक्स में अल्जीरिया की सदस्यता को लेकर जब कभी भी सम्मेलन में चर्चा होगी तो भारत इसका समर्थन करेगा। राष्ट्रपति मुर्मू 3 देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के तीसरे चरण में राष्ट्रपति कल मलावी पहुंचेंगी। इन देशों की यात्रा का उद्देश्य अफ्रीकी देशों के साथ भारत के संबंधों को सशक्त करना और विस्तार देना है।
Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman will embark on a two-nation visit to Mexico and USA today. During the first leg of her visit to Mexico from 17th to 20th of this month, Ms. Sitharaman will chair the Tech Leaders Roundtable. Ms. Sitharaman will also hold a bilateral meeting with Minister of Finance and Public Credit of Mexico. She will also hold discussions with members of the Mexican Parliament to strengthen parliamentary cooperation innovation and foster economic development. In Mexico City, Ms. Sitharaman will deliver a keynote address at the India-Mexico Trade and Investment Summit. On the second leg of her visit, Ms. Sitharaman will visit US from 20th to 26th of this month. She will participate in the annual meetings of the International Monetary Fund and the World Bank, the fourth G20 Finance Ministers and Central Bank Governor meetings. Industry leaders have lauded Prime Minister Narendra Modi's vision for Digital India at the 8th India Mobile Congress during the International Telecommunication Union World Telecommunication Standardization Assembly ITU WTSA 2024 in New Delhi. The telecom industry leaders also appreciated government's support towards reforms, innovation and collaboration. Chairman of Aditya Birla Group, Kumar Mangalam Birla, highlighted the introduction of several reforms over the years to drive India towards an even more connected, empowered and inclusive digital nation. Chairman of the Reliance Jio Infocom Limited, Akash Ambani, said the real transformation began in 2014 with Prime Minister Modi's vision for a digital India, which ignited the 4G revolution. Prime Minister Modi inaugurated the 8th edition of the India Mobile Congress yesterday during the ITU WTSA, which is being held at Bharat Mandapam in New Delhi.
नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सुबह 11:30 पर श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री अब्दुल्ला और उनके मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाएंगे। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत प्राप्त होने पर उपराज्यपाल ने उन्हें सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया था। ये चुनाव 10 वर्षों के अंतराल के बाद हुए थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए पिछला चुनाव 2014 में हुआ था। हमारे संवाददाता ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह स्थल के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। संसद की संयुक्त समिति जेपीसी की कल नई दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा की गई। लोकसभा सदस्य जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विधेयक के संबंध में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मौखिक साक्ष्य लिए गए। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणालियों की कमियों को दूर करना और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन तथा प्रबंधन की दक्षता में वृद्धि करना है। संयुक्त संसदीय समिति इस विधेयक की जांच कर संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
And let's talk about sports. In the ICC Women's T20 World Cup Cricket, West Indies have advanced to the semi-finals, defeating England by 6 wickets in Dubai last night. Choosing to field first, the Caribbean women restricted England at 141 for 7 in the stipulated 20 overs in the Group B fixture. Australia and New Zealand have advanced to the semi-finals from Group A, while South Africa booked their semi-final berth from Group B, along with वेस्ट इंडीज।
और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच सुबह 9:30 से शुरू होगा। श्रृंखला का दूसरा टेस्ट मैच 24 से 28 अक्टूबर के बीच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि तीसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच 1 से 5 नवंबर के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। तो ये थी देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और अब हम चलते हैं महानगरों की तरफ और जानते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से क्या खबरें हैं तन्वी के पास।
लेट्स बिगिन विद चेन्नई। द इश्यू बिटवीन स्ट्राइकिंग सैमसंग वर्कर्स यूनियन एंड द कंपनी हैज बीन रिसॉल्वड एमिकेबली। द गवर्नमेंट सेड वेरियस डिमांड्स ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैव बीन एक्सेप्टेड बाय सैमसंग एंड बोथ पार्टीज हैव साइंड एन अग्रीमेंट। द डेवलपमेंट कम्स आफ्टर अ कंसीलिएशन टॉक्स कन्वीन्ड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट एट the Secretariat. We have some more news from Chennai. The Tamil Nadu government informed the Madras High Court that the appropriate steps were taken to recruit full-time faculty members for all government colleges in the state through Teachers Recruitment Board, that is TRB. The submission was made by the State Law Department. The Secretary S. George Alexander said that the TRB had raised certain queries regarding the recruitment, which would be addressed in a day or two. And now let's talk about Bangalore. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah will launch the fifth phase of Kaveri Water Supply Scheme near Bangalore today. Bangalore City will get 775 MLD of water that will help provide water to 4 lakh households or 50 lakh population in 110 villages that became part of Bruhat Bangalore Mahanagar Palika a few years back. He said that the city's population is growing and expected to increase by 20 to 25 lakh in the next 4 years due to the growing presence of IT companies, good educational institutions, hospitals and other industries. Some more news from Bangalore itself. The Bangalore Division of Southwestern Railway conducted Swachhata Pakwada, which ended yesterday. As part of the rallies, also known as Prabhat Feries, which organized to create awareness on cleanliness. The street plays were performed with the theme of cleanliness. The railway officers, staff, family members, Safai Karamcharis and railway passengers were also involved in the pakhwada. The food handling staff and passengers were provided inputs on the benefits of cleanliness through rangoli, wall painting and drawing competitions. In the cleanliness drive during the pakhwada, 1.2 tons of plastic with a total of 4.26 tons of garbage was collected and even disposed of. The railways division planted 335 plants during this time. And now let's come to Hyderabad. The South Central Railway observed the Swachhata Pakwada cleanliness drive till yesterday with the theme of Swabhav Swachhata Sanskar Swachhata. The fortnight's campaign has witnessed cleaning up of a total of 5,196 kilometers of railway track across the zone during the Swachhata Pakwada campaign. SCR officials informed that over 36,000 people, including officers, staff and school students, participated in the activities at various railway premises. The SCR is counting its activities under the Swachh Bharat 4.0 till the end of this month to mark its decennial. So these were the updates from three cities, Bangalore, Chennai and Hyderabad. Now let's ask Devendra about Delhi, Kolkata and Mumbai.
Jitanvi, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया है कि शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। दिल्ली सरकार अधिकारियों को निर्देश देने के नाम पर जनता को सिर्फ गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सर्दी के दौरान होने वाले प्रदूषण के दो प्रमुख कारण हैं, पंजाब में पराली का जलाना और दूसरा दिल्ली में निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल। श्री सचदेवा ने कहा कि सरकार के पास ठोस कार्ययोजना न होने के कारण पहले पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया और अब बाद में ग्रेप वन लागू कर दिया गया। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू ग्रेप वन का सख्ती से पालन कराने के लिए मुख्यमंत्री आतिशी ने कल सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ये निर्देश जारी किए गए। इस बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे। बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि शहर में धूल प्रदूषण रोकने के लिए लगभग 100 टीमें गठित की गई हैं, जो निर्माण स्थलों का दौरा करेंगी। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, नमो भारत और दिल्ली मेट्रो रेल निगम अपने निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग सड़कों की मरम्मत का काम युद्धस्तर पर पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने शहर के लोगों से सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करने, पटाखे और कूड़ा न जलाने के साथ ही प्रदूषण की सूचना ग्रीन दिल्ली ऐप पर देने की अपील की है। वहीं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान पर पहले से ही काम कर रही है। गुरुग्राम में चल रहे सरस आजीविका मेले के तीसरे दिन भी बड़ी संख्या में आगंतुक मेले का आनंद लेने कल पहुंचे। इस मेले में देश भर से स्वयं सहायता समूह की 900 से अधिक दीदियां लगभग 450 स्टॉलों के माध्यम से अपने उत्पाद, शिल्प और व्यंजनों को प्रदर्शित कर रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज द्वारा इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। 2 सप्ताह तक चलने वाले इस मेले में स्वयं सहायता समूह की दीदियां अपने अपने राज्यों के उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। इनमें गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की टसर, कथा और चंदेरी साड़ी शामिल है। इसके अलावा राज्यों के विशेष मसाले और व्यंजन भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र हैं। मेले में अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रही दीदियों ने आकाशवाणी से बातचीत में अपने अनुभव साझा किए। इस महीने की 29 तारीख तक चलने वाले इस मेले में आगंतुक सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक निःशुल्क भ्रमण कर सकते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की टीम ने दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर सहित दो लोगों को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ सीबीआई को शिकायत मिली थी कि एक मामले से दोषी का नाम निकलवाने और उसके विरुद्ध कार्रवाई न करने की एवज में आरोपियों ने 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में आरोपी पुलिसकर्मी 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने पर सहमत हुए थे। सीबीआई ने बताया कि दोनों पुलिसकर्मी दिल्ली के थाना बुराड़ी में तैनात हैं। और रुख करते हैं मुंबई का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने उम्मीद जताई है कि लोग आगामी चुनावों में विकास की राजनीति के लिए वोट करेंगे। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए श्री शिंदे ने कहा कि महायुति या महागठबंधन ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए एक टीम के रूप में काम किया है। इस बीच भाजपा नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मतदाताओं से दिवाली समारोह के बाद आने वाले लोकतंत्र के आगामी महापर्व में भाग लेने का आग्रह किया। श्री फडणवीस ने उम्मीद जताई कि महाराष्ट्र को आगे ले जाने की भाजपा की क्षमता में लोगों का विश्वास बना रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए संभागवार वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुंबई और कोंकण संभाग के प्रभारी होंगे, जबकि दो अन्य पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और श्री चरणजीत सिंह चन्नी विदर्भ क्षेत्र की देखरेख करेंगे। सचिन पायलट मराठवाड़ा के प्रभारी होंगे। श्री टी एस सिंहदेव को पश्चिमी महाराष्ट्र का प्रभार संभालने के लिए कहा गया है, जबकि डॉ सैयद नसीर हुसैन उत्तर महाराष्ट्र की देखरेख करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने मुकुल वासनिक और अविनाश पांडे को राज्य चुनाव वरिष्ठ समन्वयक के रूप में भी नियुक्त किया है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार चौथे आरोपी हरीश कुमार को मुंबई की एक अदालत ने 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक पुणे में स्क्रैप डीलर का काम करने वाला हरीश कुमार सिद्दीकी की हत्या की साजिश का हिस्सा था और उसने इस ऑपरेशन के लिए वित्तीय मदद भी की थी। हरीश कुमार को मंगलवार को उत्तर प्रदेश के बहराइच से गिरफ्तार किया गया था। मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारियों ने बैंकॉक से मुंबई की यात्रा कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से मारिजुआना नामक प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत 3,46,00,000 रुपए है। एक अन्य यात्री को 525 ग्राम सोने की छड़ों की तस्करी के आरोप में पकड़ा गया है। और कोलकाता का रुख करते हैं। कोलकाता में पश्चिम बंगाल सरकार ने 1970 से 2005 के बीच कोलकाता की सड़कों पर चलने वाली आखिरी डबल डेकर बस को संरक्षित करने का फैसला किया है। पहले राज्य सरकार ने बस को हटाने का फैसला किया था, लेकिन एक समूह की अपील के बाद उसने अपना यह फैसला बदल दिया है। वर्ष 2005 में कोलकाता की सड़कों से आखिरी डबल डेकर बस को हटाया गया था। 2016 में इसे फिर से शुरू किया गया और 2020 तक शहर में न्यू टाउन इको पार्क से इको अर्बन के बीच सीमित सेवा के साथ ये चलती रही। 2020 के बाद इसे कोविड-19 महामारी के कारण बंद कर दिया गया था। और अब महानगरों के मौसम का हाल भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री यानी उमस और गर्मी बनी रहेगी। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री के आसपास रहा, जिसके कारण सुबह का मौसम ठंडा रहा। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना है। तापमान 25 और 34 डिग्री के बीच रहेगा। और कोलकाता में भी बादल छाए रहने की संभावना है। हल्की से मध्यम बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान 33 और 25 डिग्री के बीच दर्ज किया जा सकता है। और तन्वी, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में मौसम कैसा रहेगा?
Yes, about Chennai and Bangalore, both are expected to have generally cloudy sky with heavy rain. The minimum temperature for Chennai was 25 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. And if we talk about Bangalore, the minimum temperature was 20 degrees and the maximum will be around 23 degrees. Now, Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or even thunder showers. The temperature will hover somewhere between a minimum of 23 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
जी, और इतिहास के बाद मौसम के बाद अब बात इतिहास के पन्नों में दर्ज आज के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की। आज के दिन वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने ब्रिटिश क्षेत्र पर पहले हमले शुरू किए थे।
In the year 1905, Bengal was partitioned by Lord Curzon on the pretext of it being too big to administer. And if we talk about 1945, Food and Agriculture Organization, FAO, was established.
1959 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना आज ही के दिन हुई थी और 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और तन्वी, नोबेल की बात हो रही तो 1984 के दिन भी आज के दिन की जो घटना है उसका भी जिक्र करें, जब दक्षिण अफ्रीका के सामाजिक कार्यकर्ता डेसमंड टुटू को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।
Well, we are talking about awards, so let's talk about Dr. Nelson Mandela. He was conferred with Bharat Ratna, the highest civilian honor, in the year 1990. And in 1999, Geeth Sethi bagged the Fred Davis Award as the Billiards Player of the Year in 1998 to 1999.
एक और पुरस्कार की बात करते हैं, जब 2003 में मलयाली फिल्मकार अडुल गोपालकृष्णन को फ्रांस का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स दिया गया था।
एंड इफ वी टॉक अबाउट 2014, न्यूजीलैंड, मलेशिया, एंगोला, स्पेन एंड वेनेजुएला वर इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दैट इज यूएनएससी, एज नॉन परमानेंट मेंबर्स। वेल, अलोंग विद दीज dates in history, there is a very special day which we celebrate today, that is on 16th of October, which is World Food Day. This day highlights the fight against hunger and malnutrition. This day focuses on promoting sustainable agriculture and equitable food access. So there is a purpose behind this particular day. We should not waste our food at all. What do you have to say about it, Devendra?
Bilkul theek hai aapne.
So we should not waste our food and whatever our requirement is. So let's say that we go to some buffet system and we take a lot of food on our plate because it's very catchy and attractive.
Utna hi le apni thali mein jitna aap kha sakte hain.
Absolutely.
Taki wo na jaye nali mein. ये एक स्लोगन भी चलता है,
वेरी फेमस, वेरी नोन, बट वी डोंट अप्रिशिएट इट टू वेल।
जी, क्योंकि देखिए, खाने की सबसे बड़ी बात यह है कि खेतों में जब उपजाया जाता है और किचन में, रसोई में जब वो तैयार किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस में एक बड़ी लंबी श्रृंखला है जिसमें मेहनत लगती है, संसाधन लगते हैं और उनको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए।
right.
क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी थाली में उतने खाने नहीं पहुंच पाते जिनसे उनका पेट भर सके।
Absolutely, this day absolutely justifies this quote and the world rallies together on this day to overcome hunger and pursue ways to eat healthily and sustainably. In 2024, the particular theme for this day is Right to Food for a Better Life, that advocates for food as a fundamental human right.
और अब आगे बढ़ते हैं, याद करते हैं उन महान लोगों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। सबसे पहले याद करेंगे भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले अनेक क्रांतिकारियों में से एक, गणेश घोष को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। उन्हें मानिक तल्ला बम कांड के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 1928 में वे जेल से बाहर निकले और कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया। गणेश घोष का जन्म 22 जून सन 1990 को हुआ था। विद्यार्थी जीवन में ही वे स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हुए थे और 1922 की गया कांग्रेस में जब बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकार हुआ तो गणेश घोष और उनके साथी अनंत सिंह ने नगर का सबसे बड़ा विद्यालय बंद करा दिया था। इन दोनों युवकों ने चिटगांव की सबसे बड़ी मजदूर हड़ताल की अगुवाई भी की थी। भारत की स्वाधीनता के बाद देश में हुए पहले लोकसभा चुनाव में 1952 में गणेश घोष बंगाल विधानसभा के सदस्य चुने गए, 1967 में लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हुए।
Today we are remembering Harish Chandra Mehrotra, an Indian-American mathematician and physicist who did fundamental work in representation theory, especially harmonic analysis on semi-simple Lie groups. He was a member of National Academy of Sciences and a fellow of the Royal Society. He was the recipient of Core Prize of the American Mathematical Society in 1954. The Indian National Science Academy honored him with the Srinivas Ramanujan Medal in 1974. In 1981, he received an honorary degree from Yale University, and the Indian government named the Harish Chandra Research Institute, an institute dedicated to theoretical physics and mathematics, after him.
जी, और देवी के विभिन्न स्वरूपों के लिए भजनों से जिसकी पहचान बनी और जो अब इस दुनिया में मूर्त रूप में उपस्थित नहीं है लेकिन उनके भजन हमारे बीच है। आज हम उस गायक को भी स्मरण कर रहे हैं और वो गायक हैं नरेंद्र चंचल। आज उनकी जयंती है। नरेंद्र चंचल को संगीत प्रेमियों से अथाह प्यार मिला। नरेंद्र चंचल ने भजन के साथ साथ हिंदी फिल्मों के लिए भी गाने गाए और नरेंद्र चंचल के भजनों के बिना दुर्गा पूजा खासतौर पर उत्तर भारत के क्षेत्रों में अधूरी लगती है। नरेंद्र चंचल ने अमिताभ बच्चन से लेकर शोमैन राज कपूर की फिल्मों के लिए भी गाने गाए। और भारत के जाने माने तबला वादक लच्छू महाराज जी को भी हम आज याद कर रहे हैं। उनकी आज जयंती है। बनारस घराने की तबला वादन परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लच्छू महाराज जी ने दुनिया के विभिन्न देशों में तबले को लोकप्रिय बनाया। लच्छू महाराज जी की बहन निर्मला देवी बनारस की सम्मानित गायिका थी जो सुप्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा की माँ है। लच्छू महाराज सादगी पसंद व्यक्ति थे और यही कारण था कि उन्होंने कभी कोई सम्मान नहीं लिया। और तन्वी, इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार देने की सरकार ने घोषणा की थी लेकिन इन्होंने मना कर दिया था और इन्होंने कहा था कि एक कलाकार का सम्मान, असली सम्मान वही है जब श्रोता सामने बैठा हो, वो मुग्ध हो जाए और तालियों से उसका सम्मान करे। आइए सुनते हैं उनके तबले वादन की झलक।
The death anniversary of Art Blakey, an American jazz drummer and band leader. In the mid-1950s, Horace Silver and Arthur Blakey formed the Jazz Messengers, a group which he led for the next 35 years. The group was formed as a collective of contemporaries, but over the years, the band became known as an incubator for young talent. So let's hear Art Blakey play. It's also the birth anniversary of Oscar Wilde, an Irish poet and playwright. After writing in different forms throughout 1880s, he became one of the most popular playwrights in London in the early 1890s. And he's best remembered for his epigrams and plays, and especially his novel, The Picture of Dorian Gray. And today is the birthday of John Mayer, an American singer, songwriter and guitarist. He attended Berklee College of Music in Boston, but he left for Atlanta in 1997 with fellow guitarist Clay Cook, with whom he formed the short-lived duo rock Lo-Fi Masters. And we have an amazing song by John Mayer that is Last Train Home. Let's hear that. I'm not a fallen angel, I just feel behind. Without a rock and I'm out of time.
सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी का आज जन्मदिन है। अपने सौंदर्य, अभिनय और नृत्य के लिए लोकप्रिय हेमा मालिनी ने लगभग चार दशकों के अपने फिल्मी करियर की में कई सुपरहिट फिल्में दी। फिल्मी दुनिया में वो इतनी लोकप्रिय हुई कि उनकी अदाओं ने उन्हें बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल बना दिया। अनुभवी, खूबसूरत और प्रतिभाशाली हेमा मालिनी भारतीय कला जगत की अमूल्य धरोहर है। हिंदी सिनेमा और कला जगत में योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2000 में पद्मश्री की प्रतिष्ठित उपाधि प्रदान की। उन्हें वर्ष 1973 में सीता और गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त 1999 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला। आज नहीं तो कल रिंगल, रिंगल, और अब घड़ी की सुइयां हमें संकेत कर रही हैं कि आज सवेरे के कार्यक्रम से हम आप सभी से ले लें अनुमति, लेकिन आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। ये कार्यक्रम अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a wonderful day.
Namaskar.